हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं भुजस्व महत्तमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो वीदस्वकर्णयुतमीशमेवर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मङ्गलमोहसा महतामपि कौरव्य विद्धयैकान्तिकनिष्कृतम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचित्तचोर प्रभु, जय जय माखनचोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 7 जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो विदुर जी ने भगवान से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे कि भगवान तो माया से परे हैं, फिर वो किस तरह से संसार में आकर लीलाएं करते हैं, और दूसरा कि जीव तो शुद्ध है, आत्मा तो भगवान का अंश है, फिर क्या ऐसा क्या है कि उसे संसार में आकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर रीति से मैत्रेय मुनि ने उनके उत्तर दिए कि कष्ट आत्मा के लिए तो होता ही नहीं है, ये कष्ट तो केवल जीव को तभी तक फील होता है जब तक कि जीव अपने आप को समझ नहीं पाता, अपने वास्तविकता को समझ नहीं पाता, तो बहिरंगा शक्ति उसे कष्ट देती है, दुख देती है, ताकि वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए, भौतिक जगत में जो प्रभुत्व करने की शैतानी स्टार्ट कर दी है उसको ख़त्म कर दे और अपने वास्तविक स्वरूप जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। जब वो अपनी वास्तविक पहचान सवय निवृत्ति धर्मण धर्मेण वासुदेवानुकंपया के आत्मा किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वसुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमयी सेवा की विधि के माध्यम से भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। धीरे 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 जो हमारी भ्रांत पहचान हो गई है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जिसी के कारण हम इतना इतना कष्ट इतना इतना दुख भोगते हैं, बल्कि आत्मा के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्तिमयी सेवा की विधि के माध्यम से भगवान के निकट आते जाएंगे तो ये भ्रांतियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, और इन इस मोह को धीरे धीरे समाप्त करके हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और भगवत प्राप्ति करके हम इन समस्त कष्टों से छूट सकते हैं। इस भौतिक जगत में जब तक रहेंगे तो भौतिक पहचान रहेगी, लेकिन इस भौतिक जगत की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस जगत में मनुष्य देह में हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इन दुखों से छूटने का। तो अभी आगे इसी बात को और एक सुंदर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हुए श्लोक नंबर 13 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, यदि इंद्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे रहो दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेश संस्पुत्तस्येन कृष्णशः। यदि इंद्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेश संसुप्तस्येव कृष्णश। यदिन्द्रियो, यद मन जब इंद्रियो मतलब इंद्रियां, उपरामोथ, उपरा मतलब तृप्त, अथ इस प्रकार इंद्रियां भौतिक वस्तुओं प्राप्त करके कभी तृप्त नहीं होंगी, लेकिन कैसे तृप्त होंगी? दृष्ट आत्मा, दृष्टा या परमात्मा के प्रति, परे यानी आध्यात्म में, हरोमनि भगवान में, विलीयते यानी लीन हो जाती हैं। हरे मन भगवान के अंदर जब इंद्रियां लीन हो जाती, कैसे लीन हो जाती हैं? जब इंद्रियां भौतिक वस्तुओं को देखना छोड़ देती हैं, भौतिक वस्तुओं को सुनना छोड़ देती हैं, भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करना छोड़ देती हैं, जब वो भगवान के अंदर लीन होती है। कितने सुंदर तरीके से बता रहे मैत्रेय मुनि, यदेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे हरो, कि वो इंद्रियां जो भौतिक भोग करती रहती हैं तब तक वो क्लेश को, दुख को सहन करती हैं, और जब वो इंद्रियां भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है, विलीयते मतलब लीन हो जाती हैं, तदा उस समय क्या होता है, क्लेशा यानी जितने भी कष्ट हैं वो सब संसुप्तस्य, ऐसे जैसे हम गहरी नींद में, किसी को बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है, कोई उसका सर काट रहा है, कोई उसको है ना जान से मार रहा है, कोई जिन भूत आ जाता है, पीछे पड़ा है, इतना वो भाग रहा है, कैसे भी करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, मगर किसी भी तरह से बच नहीं पा रहा। अचानक से ऐसा होता है कि कोई उसे जगा देता है, फिर वो क्या करता है, बच गया है ना, उसको लगता है अरे शुक्र मैं सो रहा था, कितना खतरनाक इतना सपना दिख रहा था। तो इसी तरह से यहाँ बता रहे हैं, क्लेशा संसुप्तस्यैव कृत्स्नशा, संसुप्तस्य यानी गहरी नींद का भोग कर चुका व्यक्ति, इव यानी दृश्य सदृश कृष्णशा, पूर्णतया सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं जब इंद्रियां भौतिक भोग को छोड़कर भगवान में लीन हो जाती हैं। बहुत सुंदर बताया, अनुवाद देखिए, जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव का कंपन यानी चंचलता, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, इंद्रियों के कारण होता है। अब जैसे हमने कल सुना था ना, आत्मा स्थिर है जैसे चंद्रमा स्थिर है, लेकिन जल के अंदर जो कंपन है वो किस लिए है, क्योंकि वो आत्मा जो प्रतिबिंब है वो जल में है। उसी तरह से जीव आत्मा संतुष्ट है, उसको भौतिक भोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये इंद्रियां जो है ना वो परेशान करती हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस जीव का कंपन चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ इंद्रियों के कारण है। तो इंद्रियां क्यों के भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, ध्यायते विषयान पुंसो संगस्ते शुपजायत। फिर ऐसा होता है, ये चाहिए, इसके साथ संग करना है, ये चाहिए ना। तो चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती हैं और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न कर लेते हैं। अब आत्मा तो स्थिर है, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर में है, इसलिए जिस तरह चंद्रमा भी प्रतिबिंब जो है ना जल के अंदर है तो कंपता हुआ दिखता है, इसलिए इंद्रियां जब भौतिक कर्मों के माध्यम से भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करती हैं तो फिर आत्मा में कंपन उत्पन्न करती हैं। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इंद्रियों को भौतिक कार्यों से विरक्त करना। कुछ लोग बोलेंगे, भाई मन में तो हम भगवान का नाम जप रहे हैं ना, अब खा रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या, सुन रहे हैं क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, मन तो साफ है, भगवान में लीन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो इंद्रियां भटक रही होती हैं उनका मन कभी शांत नहीं हो सकता, कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, तस्मात् तुम इंद्रियाण यादो नियम यार भरतेर शबा। हे भरत श्रेष्ठ, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करो, क्योंकि इंद्रिया आप जब जो दिल करेगा खाओगे, जो दिल करेगा देखोगे, जो दिल करेगा सुनोगे, जिससे दिल करेगा स्पर्श करोगे, फिर भी तुम समझते हो कि भगवान में मन लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ कृष्ण प्रभुपा जी बता रहे हैं, अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा यानी ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है। वो क्या सोचते हैं, बस भगवान के अंदर लीन हो जाएं और कार्य ही करना छोड़ दें, कार्य कर। किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं हैं, अपितु वे अपने दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए, संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कुलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भाव रोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। श्रीमद् भगवद गीता 2.59 में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और उसमें भगवान ने क्या कहा है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। भगवान बोलते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपको हायर टेस्ट मिलता है ना, जब इंद्रियों को भौतिक वस्तु देखने को मिलती है ना, तो भौतिक वस्तु का टेस्ट जो है वो टेस्ट लेस हो जाता है। थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होगा, जिस वस्तु को देखकर आपको लगता है कि वाह दिस इज अ फीस्ट फॉर माय आईज, तो उसके बाद क्या होगा, थोड़े समय के बाद वही आपकी आंखों को खटकने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो देखकर आपको ऐसा लगता है शक्ल उसकी नहीं पसंद लगती। ऐसा है संसार में, जिस जिस वस्तु को हम प्रेम करते ना, कुछ समय के बाद वो हमें अच्छी नहीं लगती है। वो प्राप्त होने के बाद उस वो टेस्टलेस, क्योंकि उसमें असल में टेस्ट था नहीं। टेस्ट तो हमारी सिर्फ ये अज्ञानता है कि संसार में कहीं पर है नहीं किधर भी। भौतिक वस्तुओं को खाने में, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कोई आनंद नहीं है, इसलिए जब इनको हायर टेस्ट दिया जाता है, इंद्रियों को जब आँखों को भगवान का दर्शन कर, भगवान के दर्शन से कभी आँखें तृप्त नहीं होती हैं। हम देखो भगवान के रोज़ दर्शन करते हैं, फिर भगवान के चरणों, भगवान के चरण से ऊपर दृष्टि करने का कभी कभी मन नहीं करता। छोटे छोटे भगवान के चरण हैं, उनके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा होता है, पीली पीतांबर भगवान ने पहनी हुई है। भगवान कितने सुंदर कमर पे कमरबंद बना हुआ है। भगवान के हाथ से इतने सुंदर तरीके से भगवान ने बांसुरी पकड़ी हुई है। ओहो, भगवान के अधर, भगवान के नयन, भगवान के घुंघराले बाल। तो ये जो सुंदर सुंदर भगवान का स्वरूप है ना, यदि एक बार इस सुंदर स्वरूप का टेस्ट आ जाए ना, फिर लगेगा कि दुनिया की किसी वस्तु में आनंद नहीं है, किसी चीज़ में टेस्ट नहीं है। और जब भगवान के विषय में शब्द, अभी देखो कान जो है ना, अभी तो भौतिक बातें सुनने में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, गॉसिप सुनो, इसकी बात सुनो, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सुनने में आना। लेकिन एक बार किसी को कृष्ण कथा सुनने का नशा लग जाए, फिर पता है वो तड़पता है कि कब मुझे कथा सुनने का अवसर मिलेगा, कब मैं सुन। तो इतना हाइयर टेस्ट है इसमें। लेकिन हमको क्योंकि अभी भाव रोग है ना, तो जिस तरह से कोई रोगी होता है उसको है ना मीठी चीज़ें में कड़वी लगने लगती है ना, उसको क्योंकि इतने टाइम से उसने दवाइयाँ खाई होती हैं, माउथ का टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो फिर उसको अच्छी नहीं लगती हैं। उसी तरह से हमने ना जाने कितने जन्म जन्मांतर तक भौतिक वस्तुओं का भोग किया है। तो शुरू शुरू में भगवान की चीज़ें, भगवान का नाम, भगवान के कथाएँ, भगवान का दर्शन इतना आनंदित नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे सुनते जाते हैं तो फिर हमारा ये रोग समाप्त होता है और फिर हमको भगवान के ही दर्शन में आनंद मिलता है, उनकी कथाओं में आनंद मिलता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, इंद्रियों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। निर्विशेष वादियों को तो अक्कल ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अगर आप चाहोगे तो भी आप अपनी इंद्रियों को रोक नहीं सकोगे। क्यों? कर्म इंद्रिया संयम या ये आस्ते मनसा स्मरण। कर्म इंद्रियों को तो रोक दोगे, लेकिन मन में जो तुम्हारी हवस भरी जो बातें चल रही हैं उनको कैसे, वो तो स्मरण होती रहेंगी। तो कर्म तो वैसे ही हो रहा है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्हें कार्यों करने से रोकना नहीं होता है, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। श्रीमद् भगवद गीता 2.59 में कहा गया है कि मनुष्य तभी संसार सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। चेतना स्वभावतः सक्रिय होती है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाति बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके ही रोका जा सकता है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ भगवान का प्रसाद आस्वादन करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारने, पांव उनके मंदिरों तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेंगी, तभी वह दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेंगी और भौतिक कार्यों से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगी। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा हैं। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालें और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगा लें। तभी इंद्रियां पूर्णतया तुष्ट हो सकती हैं और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी सताई नहीं जाएंगी। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं उनको रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई बच्चा उत्पाती है तो उसको कृत्रिम रीति से नहीं, उसको कोई हाई श्रेष्ठ कार्य यदि हम देंगे ना, तो वो उसमें अपने आप को उसमें लीन करेगा और फिर वो बहुत उपद्रव करना छोड़ देगा। उसी तरह से इंद्रियों को भी हाइयर टेस्ट अगर हम देंगे तो वो उसमें आनंद लेने लगेंगी और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा हैं। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो भगवान देख रहे हैं, वो दृष्टा हैं। अब हम सोचें, संसार में हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं ना, तो संसार को खुश करने का प्रयास कर रहे होते हैं कि कैसे हम संसार को खुश करें। और पूरा जीवन हम दुनिया को इम्प्रेस करते 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 कोशिश करते रहते, किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हम कितना भी अच्छे तरीके से, हमारा इंटेंशन चाहे कितना भी प्योर हो, कितना भी अच्छा हो, फिर भी दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है। और ये जो भगवान है वो दृष्टा है ना, वो हम कितना ही और हमारा प्रेजेंटेशन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भगवान तो हमारा इंटेंशन देखते हैं, हमारा भाव देखते हैं। तो इसलिए अगर सही में इम्प्रेस करने की इच्छा हो ना, तो उस भगवान को इम्प्रेस करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम सबको संतुष्ट करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा हैं। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान इस पर कृपा दृष्टि डालें, भगवान खुश हो जाएं हमारे कार्य से, हमारे भाव से, और भगवान अपनी कृपा की दृष्टि डालें और हमें ये सोचेंगे कितना अच्छे से कोशिश तो कर रहा है ना, तो भगवान हमको हमारा भले प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो, हमको नहीं आता हो, लेकिन हमारे भाव को देखकर भगवान हमें अपनी दिव्य सेवा में लगाते हैं। और जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं किसी भी तरह से, तभी इंद्रियां पूर्णतया संतुष्ट हो सकती हैं और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी भी सताई नहीं जाती। जब एक बार कृष्ण सेवा में मन लग गया ना, फिर इंद्रियों को चाहे अगर भौतिक जगत में दुख लगता भी है ना, तो भी वो सपने की तरह है, उसे सताता नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को सदैव प्रसन्न रखें, क्योंकि भगवान हमारे कार्यों को देख रहे हैं और वो अगर कृपा करेंगे तो फिर और कुछ क्या प्राप्त करने के लिए रह जाएगा। अब मैत्रेय मुनि एक अंतिम श्लोक में विदुर जी के सारे प्रश्नों को समेट कर उसका उत्तर देते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। वे कहते हैं, आशीष संक्लेश श्यामं विधत्ते गुणानुवादश श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तत् चरणारविन्द पराग सेवारि वा रतिरात्मलब्धा। आशीष संक्लेश श्यामं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तत् चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। शब्दार्थ, अशेष संक्लेश शमं विधत्ते। अशेष मन असीम, संक्लेश मतलब कष्टमय स्थिति, शमं मन शमं शमन, विद्धते अर्थात संपन्न कर सकता है। जितनी भी दुख भरी स्थिति है उसको खत्म किया जा सकता है। कैसे? गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, एक ही तरीका है। गुणानुवाद अर्थात दिव्य नाम रूप गुण लीला पार्षद तथा साज सामग्री इत्यादि का श्रवणम सुनने तथा कीर्तन करने से, मुरारे यानी भगवान श्री कृष्ण का। अशेष संक्लेश शमं विदत्ते, सारे दुखों को इस एक विधि से समाप्त किया जा सकता है, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, अगर आप भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो। और फिर आगे कहते हैं, उससे भी बहुत सुंदर बात है, वे कहते हैं किं वा पुनस्तत् चरणारविंद किम वा, और अधिक क्या कहा जाए, पुनः फिर तत् मन उसके चरणारविंदन यानी चरणा चरण कमल पराग सेवा सुगंधित धूल की सेवा के लिए रति आत्मलब्धा, रति मना आकर्षण, आत्मलब्धा मतलब जिन्होंने ऐसे आत्म उपलब्धि प्राप्त कर ली। ये भगवान की केवल कथा श्रवण करने से, उनके नाम गुण लीलाओं का कीर्तन करने से ही जीव के समस्त दुखों को समाप्त किया जा सकता है। फिर अगर उस जीव की मति रति भगवान के चरण कमलों की धूल की सेवा करने के लिए उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उसका क्या कहा जाए। कितना सुंदर श्लोक है ना। अनुवाद देखिए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भक्तों। हम जो भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं ना, आपको लगता नहीं है कि इससे क्या हो रहा है। हमको लग रहा होता है कि हम इतनी अच्छी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम तो ऐसे ही भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, बस सोला मला कर रहे हैं। आपको उसका रिजल्ट रियलाइज नहीं हो रहा है, आपको संसार का कोई दुख अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हमको कितना आज देखो, जो भक्त होते हैं इतने संतुष्ट होते हैं, जो भक्त नहीं होते ना उनके पास भले दुनिया भर की ऐश आराम होते ना, लेकिन वो सदैव परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और जो भक्त होंगे ना उनके पास भले कितनी ही परेशानियाँ होंगी, उनसे पूछो भाई क्या हाल है, उनको पता ही नहीं होता टेंशन का मतलब क्या होता है। व्हाट्स द टेंशन, उनको पता ही नहीं होता। और जो भगवान के नाम गुण लीलाओं के साथ जुड़े हुए नहीं है ना, हमको देखो हम उनके साथ हमारा रिलेशन नहीं है ना, लेकिन आप जरा संसार में अगर झांकने का कभी मौका मिले ना, सब परेशान है, सब दुखी हैं, और भक्तों को खाली एक ही दुख है। जानते हो क्या, क्यों मेरा मन इतना दिल से, क्यों मैं इतना अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं कितना अच्छे से जप नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो भाव है ना, खाली भगवान को ऐसा वो तो इंटेंशन देखता है ना, भाव देख रहा होता है, और जैसे उसको लग रहा होता है कि ये बेचारा प्रयास कर रहा है और फिर भी सोचता है कि क्यों मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, बस उसी से रीत जाते हैं। उसी उसको उसका क्या कहा जाए। यहाँ पर लिखा कि वा पुनस्तः चरणारविंद, उसका क्या कहा जाए, पराग सेवा रतिरात्म, बस खाली उसकी सेवा की रति हो जाए, खाली उसकी सेवा में भगवान के चरण कमलों की धूल की सेवा करने की खाली इच्छा हो जाए बस। हम किसी तरह से भी योग्य नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, और ना ही भगवान को हमारी किसी सेवा की आवश्यकता है। बस हृदय के अंदर ये इच्छा हो जाए कि हम भगवान की सेवा में किसी तरह से यूज हो जाएं, ये इच्छा देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई है। उनमें से एक ज्ञान योग है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दार्शनिक ज्ञान का मार्ग। दूसरी विधि है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सेवा में छूट जाना। इन दो अत्यंत ही लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कर संस्तुत किया गया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं हैं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूल के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं दो तरह की से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, एक तो दार्शनिक है, ज्ञान योग है, और दूसरा भक्ति योग है। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ बताया गया है कि भगवान की भक्ति करना जो है वो बहुत सरल है, बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसके लिए हमको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि कब मुझे उसका लाभ मिलेगा, कब। जिस समय से भक्ति प्रारंभ होती है, जैसे आपने माला उठाई, नाम जब शुरू किया, उसी समय से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं आपके जो अपराध हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे कथा श्रवण करते हैं वो उसी समय से हो जाता है। तो भक्ति योग पर मार्ग पर चलना उसके पुण्य कर्मों के सकाम कर्म के लिए या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती है। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं, अभी दो अवस्थाएं यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति दो तरह से की जाती है। पहली, मान्य शास्त्रों के नियमानुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, यानी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना जैसे शास्त्रों में बताई गई, और दूसरी भगवान के चरण कमलों की धूल के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना, यानी भगवान के चरण कमलों की धूल के कण, उनकी सेवा करने के लिए इच्छा उत्पन्न हो जाना। तो प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है कि हम साधन, यानी जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है वैधी भक्ति जिसको बोलते हैं उसको करते हैं, और जो नव जिज्ञासियों द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। नव दीक्षित जो हैं, निष्ठावान जो हैं, और जो गुरु महाराज के आदेशानुसार भगवान की शास्त्रों नियमों के अनुसार, जैसे सुबह को मंगला आरती होती है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को श्रृंगार किया जाता है, भगवान की सेवा, तो ये अवस्था जो है शुद्ध भक्तों के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, रागानुगा भक्ति जिसे कहते हैं, तो जिसमें परिपक्व यानी प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विधि सेवाओं में लगा रहता है, यानी फिर वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, भगवान के साथ इतना राग हो जाता है ना, कि फिर उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बल्ले करे। जैसे अभी हमको कैसा होता है, कोई उत्साह देता है कि भाई 16 माला जप करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की शास्त्र को पढ़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए, आरती थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं, फिर क्या होता है, अगर हम श्रवण करना छोड़ देते तो हमारी भक्ति भी ढीली पड़ जाती है, फिर वापस हमें शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। तो ऐसे करते करते जब एक दिन ऐसा आता है कि हमारी रत्ती लग जाती है, मतलब भगवान के प्रति हमारा इतना आकर्षण हो जाता है कि जिस तरह से मछली पानी के बाहर निकलकर तड़पने लगती है, उसी तरह से जब नाम जप करने का अवसर ना मिले तो तड़पने लगते हैं, जब भगवान की सेवा का अवसर ना मिले तो तड़पने लगते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व भक्त निष्ठावान अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाएं करता है। स्वतः उसको कोई नहीं भी बोलता है, वो खुद ब खुद भगवान के लिए फूल लेके आता है, भगवान के लिए गजरे बनाता है, भगवान की सेवा अलग अलग तरीकों से विविध सेवाओं में लगा रहता है। तब अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। तो उन्होंने पूछा था ना कि हम इतने दुख होते हैं, इतने कष्ट होते हैं, तो ये सब खत्म हो जाएंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो चरम साधन है भगवान की भक्ति। उद्देश्य की पूर्ति हेतु ज्ञान मार्ग या योगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना वे वांछित फल दिलाने में अक्षम हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक और भी खास बात बता रहे हैं कि भले आप ज्ञान मार्ग की ओर जाएं या ध्यान योगिक आसनों की ओर, लेकिन यदि हृदय के अंदर भगवान के लिए भक्ति नहीं है किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना वो कभी भी वांछित फल दिला नहीं सकेंगे। वांछित फल क्या है? दुखों को समाप्त करना। वांछित फल ये है कि भगवान के अंदर आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, तभी हम दुखों को समाप्त कर पाएंगे। लेकिन ज्ञान योग ध्यान योग में यदि भक्ति मिश्रित नहीं होगी तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा और फिर दुखों प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो फिर तब तक हमको कभी भी कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा। किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। तो जैसे 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 साधन भक्ति होगी, जैसा हमारे गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है, उसको हम जितना जितना परफेक्टली करेंगे ना, शास्त्रों को सुनेंगे, नाम जप करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। फिर क्या है, भक्ति जो है वो खुद ब खुद होगी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी आपने देखा है किसी को, उसका मुंह जो है उसमें से हर वक्त महामंत्र निकल रहा होता है, उसके हाथ में भले माला भी ना हो, निकल रहा होता है, उसके होंठ चल रहे होते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। तो ये क्या है, रागानुगा भक्ति है। खुद ब खुद उसका नाम जप हो रहा है, खुद ब खुद उसकी सेवाएं हो रही हैं, उसको अपने जीवन का अपने शरीर का भी ध्यान नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि मैं भगवान से किसे प्रेम करूं, कैसे मतलब वो भगवान से कुछ चाहता भी नहीं है, बस दिल से प्रेम हो गया है भगवान से। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक उठ सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। और ऐसे जब भगवान के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, फिर भगवान भी अधीन हो जाते हैं। और फिर जब भगवान अधीन हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, वो तो जिसको होता होगा उसी को पता होगा। लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि ये जो साधन भक्ति है, वो भक्ति करने से, खाली हम जो सोचते हैं, बल्कि हमसे अच्छी भक्ति नहीं हो रही है, लेकिन हम खाली सोचते भी हैं कृष्ण हमारा है, भले किसी भी लेवल तक हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो ये एहसास खाली, अभी तक वो प्रेम को प्राप्त नहीं किया है, रागानुगा भक्ति हुई नहीं है, लेकिन ये एहसास तो हो गया है कि वो कृष्ण हमारा है। और इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं, ये कृष्ण के साथ प्रेम का एहसास भी हो जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और यूं तो खुदा को छू कर देखा ही किसने है, पता नहीं जो रागात्मिक भाव से रागानुगा भक्ति भगवान की करते होंगे उनको कैसा दिव्य आनंद आता होगा। लेकिन हम जो अभी साधक हैं साधन भक्ति में, कभी भक्ति ढीली पड़ जाती है, कभी भक्ति को अच्छे से करने का प्रयास कर रहे होते हैं, कभी रो पड़ते हैं कि कृष्णा कब हम तीव्रता से आपसे प्रेम करेंगे, कब प्यार हमारा जो है वो प्रौढ़ हो जाएगा, कब हम रागात्मिक भाव से स्वतः नाम जप करेंगे, तो ये कब होगा, ये कब होगा, ऐसा खाली सोचने से भी कितना आनंद आता है कि कभी ना कभी तो भगवान हम पर भी कृपा करेंगे, कभी तो ऐसा होगा कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकर्णचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यते। जब भगवान का नाम लेते लेते हमारे नेत्रों से अश्रुधाराएं बहेंगी, जब कृष्ण कथा करते करते गला रुद्ध हो जाएगा और बोल नहीं पाएंगे और हमारा पूरा शरीर रोमांचित होने लगेगा, कभी तो ऐसा होगा जब भगवान की असीम अनुकंपा प्रेम के रूप में नेत्रों से झरझर बहने लगेगी, तो ये एहसास भी इतना अनमोल है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर ले। जब इतना सुनते हैं फिर विदुर जी जो हैं वो मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि विदुरा उवाच सञ्चिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति संचिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे संप्रधावति। विदुर उवाच, यानी विदुर जी ने कहा संचिन्नः संशय मह्यं। संचिन्न यानी कटे हुए, संशय यानी संदेह, मह्यम यानी मेरे, तव सूक्तासिना विभो, तव सूक्तासिना, तव मन तुम्हारे, सूक्तासिना मतलब विश्वसनीय शब्द रूपी हथियार से। ये जो आपने इतने सुंदर मुझे शब्द सुना है उसके कारण मेरे सारे संशय कट गए हैं। विभो हे प्रभु, अभयत्र अपि यानी ईश्वर तथा जीव दोनों, भगवन हे शक्तिमान, मनः मन मे संप्रदावति, मे यानी मेरा, संप्रदावति यानी पूरी तरह प्रवेश करता है। विदुर जी ने कहा हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। यानी वे कहते हैं कि उभयत्रापि भगवान मनो में संप्रधावति, कि जब जीव के संशय समाप्त होते ना, फिर भगवान के प्रति उसका मन जो है वो पूरी तरह से प्रवेश करना पड़ता है। जीव का मन तब तक भटक रहा होता है, चंचल होता रहता है जब उसके मन में संशय होते हैं, लेकिन कोई शुद्ध भक्त के सानिध्य में जब उसके संशय समाप्त हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो उसका मन है वो भौतिक जगत से हटकर भगवान के चरणों में लगने लगता है। तो कभी हमको ऐसा लगे ना कि किसी की बात श्रवण करके या किसी के मुख से श्रवण करके मन भगवान में लग रहा है ना, तो समझो आप सही तरह से श्रवण कर रहे हो। वरना केवल विद्वान बनने के लिए यदि हम श्रवण कर रहे होते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब संशय समाप्त हो जाए और भगवान में मन प्रवेश हो जाए ना, तब समझिए कि सही शिक्षा प्राप्त हो रही है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है। अब विदुर जी जो साक्षात भगवान के साथ रहकर आए, भगवान को अपने हाथों से जिन्होंने खिलाया है, भगवान जिनको अपना कितना स्नेही मानते कि बगैर बुलाए उनके घर पे जाते, ऐसे विदुर जी को भी मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुषों से परामर्श करना पड़ता है। तो भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं। वो पता नहीं कैसे कैसे शब्द बताते हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी पता है क्या बोलते हैं, वे कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, वो पता नहीं हमारे दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल देंगे ना कि इतने भक्तों ने मेहनत से जो हमारे दिमाग में भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया है ना, उसको सबको सुला के चले जाएंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह के संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य यह है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी यानी सेव्य तथा सेवक का संबंध है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो भगवान है और हम उनके सेवक, तो यही वास्तविक तथ्य है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है, और इस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। इस तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है और इस तरह विक्षुब्द मन को प्रगति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमको कोई नया संबंध जोड़ना है या फिर नई क्रिया है। भक्ति तो हमारा वास्तविक स्वभाव है। जीवेरे स्वरूप होवे कृष्णदास, कृष्ण का दास हम वैसे ही हैं, लेकिन भौतिक जगत में आकर हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं करें, हम दासत्व नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए जीव दास अपने दासपने से छूट ही नहीं सकता। आप चाहे कितने बड़े राजा भी बन जाओगे ना, कुछ भी बन जाएंगे तो भी दासत्व करना पड़ेगा। पिता सोचता है कि मैं अपनी संतान का मालिक हूँ, है ना, प्रॉपराइटर हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा होता है? अपनी संतान की सेवा पूरा जीवन कर रहा होता है। एक कंपनी का मालिक सोच रहा होता है कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन वो सेवा कर रहा होता है हर वक्त। तो सेवा का भाव जीव से कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए वास्तविक अपनी पहचान को हमें किसी शुद्ध वैष्णव के शरण में जाकर पहचानना है कि मुझे सेवा करनी है तो वास्तविक अपने सेव्य की, अपने स्वामी की करूं, जिससे मेरा जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए और मैं उसे प्राप्त कर लूं। फिर भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, भले ही मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं सेव्य हूं, लेकिन फिर भी जब वो मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं। वो ड्राइवर भी बन जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हम उसे पहले उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि हम उनके दास हैं, हम उनके नित्य दास हैं, हम उनसे प्रेम करते, फिर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो करने से हिचके, वो कुछ भी कर लेंगे। आपको पता है एक बहुत सुंदर बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि एक दुर्योधन का वो नाई था, दुर्योधन का नाई था, रोज़ाना दुर्योधन की हजामत करता था, उसको बहुत सेवा करता था, मालिश करता था और उसको पैर दबाता था। एक बारी क्या हुआ, उसने कहा भगवान, सब कहते हैं कि तुम भगवान हो, मेरी तबीयत इतनी खराब, उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो जा नहीं सक रहा था दुर्योधन की सेवा करने के। तो बोला भगवान तुम तो सबकी सुनते हो ना, अगर मैं नहीं गया ना तो दुर्योधन कल मुझे जान से मार डालेगा, तुम एक काम करो ना, आज मेरी बजाय वहाँ पर चले जाओ, मेरी बजाय आप वहाँ पर सेवा करो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। भगवान कैसे टाले इतनी मतलब हृदय से किसी ने प्रार्थना की। तो भगवान वो नाई बन के चले जाते हैं दुर्योधन के पास, और फिर भगवान क्या करते हैं, दुर्योधन के पैर दबाते हैं, उनको मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं। दुर्योधन बोला है कि ये तुम्हारे हाथों में कितना सुंदर सुंदर, आज मुझे लग रहा है तुम्हारे हाथों का स्पर्श ऐसा लग रहा है जैसे मैं बता नहीं सक रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे कितना आनंद आ रहा है। अब दुर्योधन को क्या खबर कि ये हाथ उस नाई के नहीं है, परम करुणामयी भगवान श्री कृष्ण। तो वो दुर्योधन जो कि इतना बड़ा पापी है ना, उसकी सेवा करने के लिए चले गए भगवान। कितना कितना भगवान करते यार, इसीलिए तो पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी, कम व दयालुम शरणम कम व दयालुम शरणम प्रपद्ये, कि इनसे ज्यादा कोई दयालु हो सकता है? वो त्रिलोकी के नाथ हमारे लिए कुछ भी बनने के, नाई बनने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए शांति दूत बनने के लिए तैयार हैं, द्रौपदी की जुत्ती को पकड़ के लेकर जाना। आप बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो किसी स्त्री का, कोई पति भी होगा ना, वो भी कभी अपनी पत्नी का भी जूता उठा के नहीं घूमेगा, कोई भाई कोई बाप कभी किसी स्त्री का जूता उठा के किधर जाएंगे? वो भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं द्रौपदी को, और द्रौपदी की जूती में से टक टक की आवाज़ आ रही थी, तो भगवान ने कहा ये मुझे दे दो, और बगल में दबा के लेके जा रही है। भगवान है ऐसे भगवान, इससे ज़्यादा क्या कोई करुणामय हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई कृपालु हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऐसा हो सकता है जिसकी शरण में जाकर जीव संतुष्ट हो सके? तो ये शुद्ध भक्त होते हैं मैत्रेय मुनि जैसे, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो कि सोया हुआ है उसको वापस से जागृत करते हैं और मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रगति के पथ पर स्थिर करके भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में पुनः जोड़ लेता है। आगे में विदुर जी कहते हैं, सात्वितद्व्याहृतं विद्वन् आत्ममायायनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहि। सात्वितद्व्याहृतं विद्वन् आत्ममायायनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहि। शब्दार्थ साध्वे, साधु मतलब इतनी अच्छी जितनी के होनी चाहिए। जब कोई बहुत सुंदर बात होती है ना तो विद्वान लोग बोलते हैं साधु साधु, यानी आपने कितना अच्छे से बताया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर विदुर जी कहते हैं साध्वे तत् एतत् मना, ये सारी व्याख्याएं जो आपने बताई हैं, व्याहृतम इस तरह से इतनी सुंदर तरीके से बताई हैं, इतनी सुंदर जितने की होनी चाहिए। विद्वन हे विद्वान, और न मना नहीं, न आत्म माया यनम, आत्मा यानी आत्मा, माया मना शक्ति, अयनम मना गति, हरे मना भगवान की। तो ये भगवान की जो माया शक्ति है उसके बारे में कह रहे हैं। आभात्य पार्थम, आभाति अर्थात प्रकट होती है भगवान की जो माया शक्ति, बहिरंग शक्ति, वो प्रकट होती है। अपार्थम यानी बिना अर्थ के, निरर्थक, और निर्मूलम, निर्मूलम मतलब बिना किसी आधार के निराधार होकर। विश्वमूलम यानी भगवान जिसका उद्गम है। न यत बही, न मना नहीं, यत मना जो, बही मना बाहिरी। तो क्योंकि ये सब जो कुछ दुख है, जो कुछ कष्ट है, वो सब का कारण जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके विषय में बता रहे हैं, वे कह रहे हैं कि आपने कितना अच्छे से बताया। अनुवाद देखिए, हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, साधु साधु, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षेपों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये बहिरंगा शक्ति जो है, जो भगवान की माया शक्ति है तीन गुणों वाली, वो ही जीव को दुखी, ऐसा दुखी है ऐसा फील करने पर विवश कर देती है। बाकी रियल में आत्मा के लिए कोई दुख है ही नहीं। आपने कितना अच्छे से बताया सब कुछ, तो साधु साधु कहकर उनका सत्कार करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। ये ना जीव इतना शैतान है कि वो सोचता है कि मैं भगवान बन जाऊं, फिर भगवान उसको बोलते हैं मेरे राज्य में तो तुम भगवान नहीं बन जाओगे, इसलिए तुमको भौतिक जगत का निर्माण करके देता हूँ, जाओ जितना प्रभुत्व जताना है तो जता। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा है उसकी, कि मैं भी भगवान बन जाऊँ, तो उसके कारण ये संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण बनाया जाता है। अन्यथा ईश्वर को ऐसे जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भगवान तो संसार में आते क्यों। मतलब अगर जीव की इच्छा नहीं होती ना, तो वहां पर ही सब लोग आत्मा, कितना अच्छा लगता ना, सारी आत्माएं जो हैं, जो मैं बोलती हूँ ना अक्सर 75% आत्माओं ने बोला हमें आध्यात्मिक शक्ति में आना है, और 25 हम जैसे बेवकूफ लोगों ने बोला कि नहीं हमको संसार। अगर 100% बोलती कि हमको ऊपर आना है, आपकी सेवा करनी है, तो फिर भौतिक जगत भगवान बनाते क्यों, है ना। भौतिक जगत बनाने की जरूरत ही नहीं होती, वहीं पर सब भगवान के साथ हम लोग होते हैं, कितना अच्छा लगता, सब भगवान की सेवा कर रहे होते। लेकिन हम लोग ने नालायकी करी ना, इसलिए यहाँ पर भगवान को दुनिया बनानी पड़ी, और बार बार खुद को आना पड़ता है, अपने भक्तों को भेजना पड़ता है। ऐसा एक तरह से ये भी है कि भगवान भी है ना इंद्रियों दो, मतलब वरना भगवान के लिए एक्टिविटीज ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में इस बहुत। अभी देखो श्रीला प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बताते हैं, मुझे याद आ रही है कि एक एक है ना बच्चा हो, उसको है ना हम वो बोरी वाली गेम होती है ना, जब कमर तक बोरी में लपेट देते हैं, मतलब बोरी होती है ना जो चावल की बोरी होती है उसमें ना बच्चे को डाल देते हैं, मतलब कमर तक, और उसको बांध देते, फिर उसको बोलते भागो, फिर वो भाग भाग के रेस में जीतता है। अभी सोचो जब तक वो बोरी में है और फिर भी वो भाग भाग कर रेस जीत रहा है, तो सोचे कि जब वो बोरी से निकल जाएगा तो उसके भागने का जो स्पीड होगी वो कितनी तेज़ होगी। तो अभी जो आत्मा हमको लग रही है ना एक्टिव है, वो आत्मा शरीर के अंदर पूरी जकड़ी हुई है, पूरा छोटा सा आत्मा है और पूरा शरीर के अंदर जकड़ा हुआ है, उसके बाद भी आत्मा कितना एक्टिव है। आज हम देखें कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं आत्मा के द्वारा, शरीर के अंदर आत्मा है वही तो कार्य कर रही है, बुद्धि भगवान दे रहे हैं तभी तो ये सब हो रहा है। कितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, कोई रोबोट्स बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बुद्धि मनुष्य के काम कर रही है। ये मनुष्य कैद होकर इतना सब कर रहा है, तो सोचो ज़रा जब आध्यात्मिक जगत में उसका ये शरीर रूपी जो बोरी है वो कैद है वो निकल जाएगी, फिर वो कितना एक्टिव होगा। तो अच्छा होता अगर हम लोग भी ये चॉइस करते, लेकिन अब तब नहीं किया, बेवकूफ़ी की, वापस संसार में आ गए, लेकिन अब भी तो वापस से चांस है ना, अभी भी तो हम सोच सकते कि भाई भगवान की सेवा करके भगवत प्राप्ति कर लें। तो यहाँ शीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ना जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकर होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है, अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती थी। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में उन अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। अब संसार में आकर बहुत सारे कष्टों को, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगना पड़ता है। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है, भगवान बहिरंगा शक्ति यानी माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन होता है ना। ये जो दैवी प्रकृति है, माया है, भगवान उसके स्वामी है और हम क्या हैं, दास, अधीन है। तो जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है और बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। तो सबसे दुख का कारण क्या है इस संसार में, हम जीव जो है वो भगवान की इस माया का या भौतिक जगत का हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा भौतिक बंधन है। और अगर हम जीव जो है वो बद्ध जीव जो भगवान के साथ मिलकर भगवान बनकर बनने का प्रयास करता है, तो वो माया का अंतिम पास है। वो सोचता है भौतिक जगत में रहकर एक लड्डू खाकर उससे आनंद आएगा नहीं, तो मुझे पूरी प्लेट लड्डू की मिलेगी यदि मैं भगवान बन जाऊँगा तो अच्छा है, फिर भगवान में तदाकार होने का या भगवान से मिलकर एक होने का सोचता है। ये सब माया है और वास्तविक में माया से छुटकारा प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी असलियत को समझें कि हम दास हैं, हमको भगवान की सेवा करनी है। और एक बहुत ही सुंदर बात मुझे याद आ रही है कि जब हम सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हमको बस नौकर की तरह रहना पड़ेगा। देखो एक राजा हो ना, अब राजा का जो कुक है, राजा का जो बावर्ची है, वो खाना कौन सा खाता है, जो वो राजा के लिए बनाता है ना, जो राजा के लिए इतना टेस्टी खाना जब वो बनाएगा और राजा से पहले खाएगा है ना, टेस्ट करेगा ना, तो पहले उसको खाने का मौका मिलता है ना, तो मतलब वो भी वही खा रहा है जो राजा खाता है। अब राजा का जो ड्राइवर होगा, राजा की गाड़ी कैसी होगी, बहुत बड़ी सी एकदम ज़बरदस्त BMW होगी या फॉर्चुनर होगी, कितनी बड़ी होगी, लेकिन फ्रंट सीट पे कौन बैठ रहा है, राजा तो पीछे बैठा होगा ना, फ्रंट सीट पे ड्राइव कर रहा है, क्या उसका आलिशान, तो उसकी ड्राइवर की कितनी बड़ी शान है, उसी तरह से वो राजा का घर कितना बड़ा होगा, महल होगा, उसके घर में एसी होंगे, उसके घर में स्विमिंग पूल्स होंगे, उसके घर में हर चीज़, हर सुविधा होगी। तो राजा तो अपने घर में पता नहीं कितनी देर रहता, उसको तो बहुत सारे काम करने होंगे, सारा दिन कौन रहता है, वो नौकर रहते ना। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के दासत्व को स्वीकार करते हैं और भगवान के धाम में चले जाएंगे तो अय्याशी हमारी होगी। तो बेवकूफ लोग हैं जो भगवान से तदाकार होना चाहते हैं या भौतिक जगत में प्रभुत्व जताना चाहते हैं, बुद्धिमानी तो इसी में, इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिसकी बुद्धि खुल जाती है ना, उसको पता चलता है यार मजा, वास्तविक मजा तो उसका दास बनने में है। तो हमको उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्णा।